नमस्कार साथियों, मैं छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से योगेन मोरसिया और आप सुन रहे हैं छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम समय समय पर विषय विशेषज्ञ और अनुसंधानकर्ताओं को हमारे मंच पर बुलाते हैं ताकि आपको एक दिशा और दशा मिल सके, आप उनके विचारों को जान सके और उनके विचार लोगों तक साझा हो। तो मोबाइल वाणी के मंच पर आज हम मुलाकात करा रहे हैं उस शख्सियत से जिन्हें लोग पेपरों के माध्यम से या उनके कार्यों के माध्यम से लोग जानते हैं। तो उनका नाम है श्री श्यामल राव जी। आप किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य हैं और आप एक वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं, चिंतनकार भी हैं। दूसरा ये है कि आपके द्वारा किए गए कार्यों के सकारात्मक प्रभाव आप हर दिन पेपर में, खबरों में उन्हें देखते रहते हैं। तो आज हम उनका मोबाइल वाणी के परिवार की ओर से, मोबाइल वाणी के मंच से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर,
धन्यवाद योगेंद्र जी, जो आप लोगों ने मोबाइल वाणी के माध्यम से एक मंच दिया है और मोबाइल वाणी में सुनने वाले सभी वक्ताओं श्रोताओं को भी मेरी ओर से नमस्कार।
जी सर। सर, जैसे कि आज का जो विषय है, चूंकि आप इस क्षेत्र में विगत कई वर्षों से आपने इस पर अध्ययन भी किया है, शोध भी किया है और फिर आप उसमें काम भी कर रहे हैं, नवयुवकों को तैयार भी कर रहे हैं और जगह जगह आप इनका व्यापक प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। तो सर, हम बात कर रहे हैं किशोर न्याय बोर्ड के संबंध में। तो सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए हमारे श्रोताओं।
मैं किशोर न्याय बोर्ड में मेंबर हूँ, सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ विगत 3 वर्षों से और इसके पूर्व में बाल कल्याण समिति में विगत 10 वर्षों से मैंने काम किया हूँ। और ये तो मेरा एक शौक है जो बच्चों का के बीच में मुझे काम करने का अवसर मिला है और साथ ही मैं विभिन्न क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में समाज सेवा के रूप में, अन्य क्षेत्रों में भी शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार से लेके सभी लोगों के विषय विशेषज्ञों के माध्यम से जानकारी देना विगत 20-25 वर्षों से लगातार हम कर रहे हैं और इसी कार्य का एक सार्थक परिणाम मुझे मिला कि मुझे 10 वर्षों से बाल कल्याण समिति छिंदवाड़ा में और किशोर न्याय बोर्ड में 3 साल का एक काम करने का एक मुझे अवसर मिला है और जो निरंतर रूप से किशोर न्याय बोर्ड बच्चों के सर्वांगीण हित के लिए काम करता है। इसके विषय के लिए जो हम जैसा भी लगता है और जो उस तरह हम लोग जानकारी समय समय पे देके प्रचार प्रसार के माध्यम से जो बालकों में अपराध संख्या बढ़ रही है उसको हम कैसे कम करें, ये हमारा एक लक्ष्य जो है ताकि हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे किसी गलत रास्ते में ना भटके, एक सुधार का प्रयास किया जाता है।
जैसे कि श्रोताओं, आपने अभी सुना कि आपने जो है बहुत लंबे समय से इन क्षेत्रों में काम किया है और इसके सकारात्मक प्रभाव हमारे आसपास देखने को भी मिल रहे हैं। माननीय श्यामल राव जी ने काफी कुछ समाज को दिया है। सर, एक तो ये है कि थोड़ा ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो जैसे काम करता है या इसको हम किशोर न्याय बोर्ड कह लें, तो ये क्या है सर, थोड़ा बताने की कृपा करें।
किशोर न्याय बोर्ड एक्चुअली जो है जो जेजे एक्ट बना हुआ था 2000 में बना हुआ था जी। इस जेजे एक्ट में 2 पार्ट है, एक बच्चों के संरक्षण पे है और एक विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है
जी।
जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो रहती है, जो संरक्षण के क्षेत्र में काम करती है, वो ऐसे जरूरतमंद बच्चे जो रहते हैं और जिनके माता पिता नहीं रहते या जो गुमशुदा ऐसे बच्चे रहते हैं, कुछ ऐसे अनाथ बच्चे रहते हैं जिनको वहाँ पे उनको संरक्षण देने का काम किशोर बाल कल्याण समिति के माध्यम से किया जाता है और उसके साथ साथ ही जो भिक्षावृत्ति करने वाले जो बच्चे हैं, बाल श्रम करने वाले बच्चे हैं, जो निश्चित रूप से पारिवारिक स्थिति खराब होने के कारण माता पिता उन्हें काम पे भेज दिया जाता है, तो ऐसे बच्चों को उनके सर्वांगीण हित को ध्यान में रखते हुए उनको एक आश्रय दिलाना, बाल गृह में या बालिका है तो बालिका गृह में उनको आश्रय दिलाकर उन्हें शिक्षा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बना के उनको स्किल डेवलप करके उनके अपने पैरों में खड़े करने का काम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से करते हैं। और ऐसे ऐसे जो बाल कल्याण समिति में रहते हुए भी हम लोगों ने कई ऐसे कई मामलों में हमने नियोक्ताओं के विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई किए हैं और जिसके कारण आज बाल श्रमिक की संख्या निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलती है और इसीलिए हम लोग अवेयर करते हैं किसी प्रकार का बाल सुधार हम दिखते हैं कि कोई बच्चे मिलते हैं तो निश्चित रूप से आप चाइल्ड लाइन में चाइल्ड हेल्पलाइन में आप फोन करके सूचित करें ताकि उन बच्चों को उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ सके। दूसरा आपने जैसा कहा कि किशोर न्याय बोर्ड क्या करता है, कैसे है, उसकी स्थापना कैसी होती है, उसका काम क्या रहता है, इस विषय को लेकर मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जो किशोर न्याय बोर्ड जो होता है एक बोर्ड होता है जिसमें एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होते हैं और दो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं। इसमें इसमें तो हमारा एक एक प्रकार से कोर्ट के रूप में नहीं रहता, ये एक बोर्ड के रूप में काम करता है। यहाँ पे बच्चों के किसी भी प्रकार के यदि जो बच्चे हैं किसी भी जो विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे कहा जाता है, जिसे हम लोग कभी ना बच्चों के लिए कभी जेल का प्रयोग करते हैं, ना किसी प्रकार का चोर का उपयोग करते हैं, ना किसी अन्य अन्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। हम ऐसे बच्चों को विधि का जो भी बच्चे जो है मार पीट लड़ाई झगड़ा जाने अनजाने में किसी प्रकार का किसी को चोट पहुंचा देना या किसी को प्रताड़ित कर देना, किसी के साथ शोषण करना जाने अनजाने में होता है
जी।
तो ऐसे ऐसे प्रकरणों में यदि किसी के माता पिता यदि उनके खिलाफ में थाने में जाके जिसका FIR दर्ज करती है तो ऐसे ऐसे अत्याचारी बालक को विधि के उल्लंघन करने वाले बालकों को यहाँ पे किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया जाता है। और किशोर न्याय बोर्ड एक बोर्ड की तरह नहीं करता, उनको बच्चों की इनकी स्थिति के बारे में जाना जाता है कि बच्चा किन कारणों से लड़ाई हुई, किन कारणों झगड़ा हुआ, किसी को फंसाया तो नहीं है या किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा वो गलत काम तो नहीं करवा गया है, इसका एक SIR रिपोर्ट तैयार की जाती है। उस SIR रिपोर्ट के आधार पर उसका अवलोकन किया जाता है, उसका अवलोकन करने के बाद यह निर्णय लिया जाता है कि बच्चों को सुधार गृह में या संरक्षण गृह में रखा जाए या उसके माता पिता को तुरंत उसको सौंप दिया जाए। स्थिति को देखा जाता है, जब हमें लगता है कि इसको पढ़ाई को दृष्टि को देखते हुए, इसका भविष्य को दृष्टि को देखते हुए बच्चों में किसी प्रकार का दुष्प्रभाव ना पड़े तो उस हिसाब से माता पिता को सौंप दिया जाता है और उनको सुधार करने के प्रयास करते हैं। और कुछ हमारे इसमें तीन प्रकार के अफेंस होते हैं, एक सामान्य जनरल अफेंस होते हैं, उसके बाद सीरियस अफेंस और तीसरा होता है हीनियस अफेंस, गंभीर अपराध कहलाता है।
बिल्कुल,
उसमें हम लोग जनरल सामान्य अफेंस में यही हो जाता है कि गाली गलौज कर दी है आपसी में, बच्चे लड़ लेते हैं या मोहल्ले किसी ने कुछ बोल दिया तो ये करते हैं, जैसे बच्चे जो रहते हैं नाबालिग बच्चे जो रहते हैं जो गाड़ी चलाना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहता है, उनको गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं मिलता है, उसके बाद भी चलाते हैं तो किसी के टकरा जाते हैं, किसी को नुकसान क्षति पहुंचाते हैं किसी शारीरिक रूप से।
बिल्कुल,
इस प्रकार के बच्चों को भी हम लोग वहाँ पे उनको तुरंत मतलब उनको समझाइश करके उनको छोड़ दिया जाता है ताकि वो दोबारा इस प्रकार गाड़ी का वाहन चालन ना करें, किसी प्रकार का भुगतान ना करें और ये चीजों को सुधार किया जाता है। इसी प्रकार एक प्रकार सीरियस अफेंस होते हैं, जो सीरियस अफेंस में कुछ ऐसे केसेस जो होते हैं जिसमें लकड़ी से या किसी की सलाख से या राहत से किसी को मार देना, चोट पहुंचा देना, फ्रैक्चर हाथ पे फ्रैक्चर करवा देना, जो दूसरे प्रकार के ऐसे अपराध को माना जाता है जो हमारे सीरियस अफेंस के रूप में माना जाता है। ऐसे बच्चों को भी हम लोग देखा जाता है कि दो प्रकार से देखा जाता है, उसमें एक प्रकार ये होता है कि वो ज्यादा चोट तो नहीं लगी है या ज्यादा चोट लगने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है, तो ऐसे प्रकार में को बच्चे को जमानत दिया जाए या ना दिया जाए इस पर बोर्ड निर्णय लेता है। और बोर्ड यदि लगता है कि किसी प्रकार गंभीर चोट नहीं है एक्सरे में देखा जाता है तो उसको तुरंत वहाँ पे जुर्माना वर्माना करके उनको कुछ निश्चित राशि देती है, 600, 800, 1000 रुपये, 1200, 1300 रुपये, जो उसके हिसाब से धाराओं के हिसाब से वो धारा के हिसाब से उनको छोड़ दिया जाता है। और तीसरा जो अटेंड होता है जो गंभीर जो होता है जिसमें 302 के मामले आते हैं, जो मर्डर के मामले आ जाते हैं, डकैती के मामले हैं, बड़ी चोरी के मामले हो जाते हैं, कभी ATM की चोरी के मामले हो जाते हैं या किसी प्रकार के लड़कियों को लेके भाग जाना या किसी को बलात्कार कर देना, ऐसी स्थिति को भी हम लोग वहाँ पे सीनियर सेंटेंस के रूप में गंभीर जघन्य अपराध की श्रेणी हम लोग लेते हैं। तो ऐसे ऐसी दृष्टि में हमारा जो नसरीपुर में है सुधार गया वहाँ पे ऐसे बच्चों को भेजा जाता है, उसमें भी हम लोग दो प्रकार के हैं, मतलब ज्यादा ये जो 15 साल से ऊपर का 16 साल से ऊपर का बच्चा है हम लोग उसको सुधार गया सीधी भेजते हैं, और यदि अगर 15 से 16 साल से नीचे का है तो पता कोई भी अफेंस किया है उसको हम लोग यहाँ पे संप्रेषण का नसीपुर भेजते हैं। दोनों को अलग अलग कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि क्योंकि सुधारगाह में 18 साल से 19 साल 20 साल 21 साल के भी बच्चे वहाँ पे रहते हैं, तो वो ऐसे बच्चों को उसको हम यदि कम उम्र के बच्चों को उनके साथ में शामिल कर दिया जाएगा तो उसका उसका जो हमारा दूरदर्शी जो गलत परिणाम बच्चे को मिलेगा साइकोलॉजिकल रूप से उसको जो उसकी सोच उसकी जो और क्राइम करने की और भले के साथ दोस्ती लगाने की रहेगी तो उससे हम उसको दूर रखने का प्रयास ऐसा हम लोग करते हैं।
बिल्कुल
इस प्रकार के हमारे जो अपराधों में अलग अलग उसको संप्रेषण में सुधार कर उसको भेजने का प्रयास किया जाता है। ये हमारे किशोर न्याय बोर्ड के हमारे जो है जिसमें हमारे विधि का उल्लंघन करने वाले जो भी बच्चे जिले में जो भी चौकी में पुलिस थानों में या कहीं से आते हैं तो उनको बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जाता है और बोर्ड के सामने प्रस्तुत करने के बाद बेंच एक निर्णय लेती है इसको सर्वोत्तम को देखते हुए उसको क्या किया जाए इस पर विचार करती है। ये हमारा जो है एक बोर्ड का कार्यप्रणाली है।
अच्छा सर, एक और छोटा सा प्रश्न दिमाग में आ रहा था कि ये जो है इनके ये बच्चे तो आ जाते हैं तो इनके सुधार के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं आपके माध्यम से?
हाँ, ये है कि जो बच्चों का जो बच्चों को हम लोग छोड़ देते हैं है ना, वो तुरंत मतलब छोटे जो हमारे जनरल ऑफेंस होते हैं सीरियस ऑफेंस होते हैं तो उन बच्चों को हम लोग वहाँ छोड़ते समय सारी चीजों को हम बताते हैं कि जो बच्चा पढ़ रहा है तो निरंतर वो अपने पढ़ाई को जारी रखे और किसी प्रकार का वो मतलब वो गलत रास्ते में ना जाए, कभी किसी प्रकार के विवाद में ना फंसे और कभी किसी विवाद होते हैं तो उसके बीच में ना जाए है ना। तो ये चीजों को हम लोग समझाई देते हैं और इस प्रकार छोटे वाले ऑफेंस से भी हम लोग सारी चीजों को समझाते हैं कि बच्चों को काउंसलिंग करते हैं और काउंसलिंग करने के बाद उन्हें वहाँ पे माता पिता को समझाई देने के बाद उनको प्रॉपरली शिक्षा के रूप में वो निरंतर पढ़ते रहे और ये सब सारी चीजें होती है। तो इनका इसका इसका हमारा दो मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जो हमारे सीरियस ऑफेंस और थोड़ा हमारे ये जनरल ऑफेंस जो होते हैं जो अपराध जो होते हैं तो उसमें एक हमारा जो जेजेएच की धारा 24 ये कहती है कि ऐसे बच्चे जो जाने अनजाने में गलती करते हैं किसी अपराध में फंस जाते हैं पुलिस उनको पकड़ कर लेके बोर्ड में प्रस्तुत करती है तो ऐसे बच्चों को एक हम लोग सेक्शन 24 के अंतर्गत एक प्रमाण पत्र जारी करते हैं। प्रमाण पत्र में ये उल्लेख किया जाता है समस्त थानों में चौकियों को जारी कर दिया जाए निर्देश जारी कर दिया जाता है कि इन बच्चों को किसी प्रकार के भविष्य में यदि वो पढ़ाई करते हैं और नौकरी में यदि वो आसपानी इच्छा रखते हैं सर्विस में तो उनको किसी प्रकार का कैरेक्टर सर्टिफिकेट में किसी प्रकार का धाराओं का और किसी प्रकार के क्राइम का उल्लेख न किया जाए की मानता है क्योंकि जेजेट की मानता है कि किसी प्रकार की बच्चे जो रहते हैं किसी लड़ाई झगड़ा किया जो भी कोर्ट में पेश होते हैं पुलिस के माध्यम से उसकी गोपनीयता को बनाया जाता है। यदि इस पुलिस यदि गोपनीयता यदि वो नहीं बनाती है और पेपर में पब्लिश करवाती है कि हमने आज ये बच्चे को हमने पकड़ के लाया ये है और पेपर पब्लिश करवाती है तो उसमें कानूनी रूप से सेक्शन 74 के अंतर्गत पुलिस पर भी कार्रवाई होती है और प्रकाशन वाले जो है अखबारों में उन लोगों की कानूनी कार्रवाई की जाती है।
बिल्कुल,
तो ये बजट बहुत बहुत संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है और बच्चों के भविष्य को देखते हुए किसी प्रकार का वो गलत रास्ते में ना जाए फिर से किसी प्रकार के बड़े अपराध में ना लिप्त हो तो ये एक प्रकार से हमारा सीरियस ऑफेंस और सामान्य जो हमारे अफेयर जो होते हैं उसमें वो बिल्कुल याद दी गई है ताकि वो बच्चा समाज में मुख्य धारा में जो होते काम कर सके। और दूसरा ये बात है कि जब ऐसे बच्चों को छोड़ते हैं स्कूल में जाते हैं तो कोई भी स्कूल का संचालक उसको जैसे कोई स्कूल में दो बच्चों के विवाद हो गए हैं बोले कि नहीं इसको टीसी दे दो तो वो उसके जो बच्चों के जो अधिकार है वो टीसी देने का अधिकार उस प्राचार्य को नहीं है। यदि प्राचार्य को जब उसको टीसी दे के उसको निष्कासित करता वहां से हटाता है तो उस प्राचार्य के विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई की जाती है क्योंकि उसने गोपनीयता को भंग किया उसने क्यों टीसी दी है। तो ये चीजों पर भी हम लोग स्कूल में जाके हम लोग शिक्षा देते हैं और टीचरों को समझा देते हैं ऐसे कोई बच्चों की गोपनीयता को बना के उनको शिक्षा से वंचित न किया जाए ऐसा प्रयास उसको किया जाता है।
बिल्कुल सर। सर एक और बात ये थी कि आपने जैसे बड़े सहज और सरल तरीके से आपने ये बता दिया कि जेजेबी जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कैसे काम करता है किशोर न्याय बोर्ड कैसे काम करता है। सर एक और निवेदन था आपसे कि ये थोड़ा हमारे इन मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए बच्चे या मेन स्ट्रीम से जो जुड़ नहीं पाए उन बच्चों के लिए कोई संदेश ऑर्फन चाइल्ड के लिए कोई संदेश हो तो प्लीज आप बताएं।
हाँ वो उसके लिए हमारा ये है कि प्रोजेक्ट में बच्चों का सर्वोत्तम हम किस तरह से कर सकते हैं इस पर हम लोग पूरा ध्यान दिया जाता है। नंबर एक।
बिल्कुल सर जी
नंबर दो, नंबर दो की कोई भी बच्चा यदि चाहे वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास प्रस्तुत हो चाहे किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत हो, इन
जी
बच्चों का हम लोग वहां पे पहले SIR बनाते हैं। SIR के माध्यम से उसके पारिवारिक और पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि को देखा जाता है, और बच्चा यदि स्कूल जाता है तो स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना। इसके लिए एक ICP बनाती है, इंडिविजुअल केयर प्लान, है ना, व्यक्तिगत देखरेख योजना के अंतर्गत प्लान तैयार किया जाता है, जो हमारे विधि सह परीक्षा अधिकारी जो रहते हैं, हमारे पदस्थ रहते हैं, उनके माध्यम से वो ICP तैयार किया जाता है। और ICP तैयार करने के बाद वो बच्चा स्कूल जा रहा है नहीं है, वो पुनः रूप से किसी प्रकार का अपराध में लिप्त नहीं हो रहा है, कहीं फलाना है, तो प्रारूप 6 के अंतर्गत SIR तैयार की जाती है, प्रारूप 7 के तहत ICP तैयार की जाती है, और प्रारूप 10 के तहत में उसका फॉलोअप किया जाता है, जो निरंतर बच्चे में सुधार आया नहीं है, क्या स्थिति है, स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, और वर्तमान में वो किस लाइन में है, यदि वो कहीं नौकरी कर रहा है, यदि किसी काम में लगा हुआ है, तो वो उसको काम के बारे में उसको प्रोत्साहित करना है, ये हमारे एक प्रमुख उद्देश्य रहता है। कुछ ऐसे बच्चे जो रहते हैं जो निश्चित रूप से कोई स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कुछ सीखना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी हम लोग वहाँ पे जैसे ITI में उनको प्रवेश दिलाना, ताकि वो कौशल उन्नयन के माध्यम से कुछ सीख सके। कुछ ऐसे हमारे जो प्राइवेट कंपनी जो रहती है, जैसे अंबुजा वाले, सीमेंट वाले, कुछ है ITD अपना TIC वाले, और अपना FDDI वाले, और अपना जो स्टेक होल्डर जैसे कोई भी ट्रेनिंग जो रहते हैं स्किल डेवलपमेंट के, प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन के स्कीम के अंतर्गत, उनसे जोड़ के वहाँ पे 2-3 महीने जिनको स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, वो प्रशिक्षित करने के बाद अपना हुनर प्राप्त करने के बाद अपने व्यवसाय में लगते हैं, ताकि दोबारा वो बच्चे किसी क्राइम से ना जुड़े। ऐसा प्रयास जो हमारा है इसमें किया जाता है, ताकि बच्चा सही रास्ते में जाए और अपने आप सुधार लाए। जब कोई बच्चा यदि काम करेगा तो निश्चित रूप से ये नकारात्मक जो सोच रहती है अपराध करने की प्रवृत्ति, वो बिल्कुल दूर करती है। तो यही है हमारे मेन जो रहता है ICP लीडर केयर प्लान और फॉलो, और यदि दोनों चीजें अच्छी होती है तो बच्चा दोबारा अपराध में कभी लिप्त नहीं होगा और कभी रास्ते में नहीं जाएगा, ये एक अच्छा प्रयास किया जाता है। लेकिन कई कई बच्चों का फॉलोअप ना होने के कारण, उनका डिजिटल केयर नहीं बनने के कारण, वो फिर से दोबारा 2-3 बार अपराध करते हैं, और बार बार वो न्यायालय में पेश होते हैं, और न्यायालय में पेश होने के बाद उनको फिर बार बार सोचना पड़ता है हम लोग को छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए। इसमें एक थोड़ी चीज में सभी स्टेक होल्डर जो भी हमारे श्रोता इस हमारे विवादन को सुन रहे हैं, तो मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि इस आजकल वर्तमान समय परिदृश्य में देखा जाता है कि क्योंकि गेजेट एक अलग कानून है, बहुत लिबरल है, और इसमें ज्यादा सजा का प्रावधान नहीं है। यदि कोई भी यदि अगर 302 का मर्डर भी करता है, यदि अगर 15 साल का बच्चा, तो अधिकतम सजा का प्रावधान 3 साल है, और लेकिन यदि वही 302 जो यदि 16 साल 18 साल 19 साल 20 साल का कोई व्यक्ति यदि अगर कोई मर्डर करता है, तो उसकी सजा जो है 20 साल 10 साल आजीवन कारावास भी हो सकती है। लेकिन इसका जो है इस जेजेट के वजह से बच्चे लोगों का किसी भी गलत काम के लिए चोरी करवाना, है ना, किसी का मर्डर करवाना, किसी के साथ गलत करवाना, किसी से लड़ाई झगड़ा करवाना, ये सारी प्रकृति बड़े लोग करते हैं, उनका बड़े लोगों के पीछे उनका हाथ होता है। तो हमके इस बात के लिए हर माता पिता को से उनसे ये करूंगा कि बच्चा यदि कोई अपने देखभाल करे, कोई गलत रास्ते में नहीं जा रहा है, किसी कहने में कोई वो तो नहीं कर रहा है, यदि किसी प्रकार का चोरी किया है तो उसके पीछे किसका हाथ है, इससे ज्यादा ध्यान देने की आज के वर्तमान में हर परिवार परिजन के माता पिता को ध्यान देना पड़ेगा। यदि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो छोटे बच्चों का उपयोग बड़े लोग करते हैं, और बड़े लोग करने के बाद फिर वो सारी चीजें गलत रास्ते में जाके बड़े बड़े चोरी और अफेंस करवाते हैं। इसी प्रकार जो है बच्चियां भी जो रहती है, नाबालिग बच्चियां रहती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के भी हमारे पास ऐसे केस कई आए हैं जिसमें बच्चियों के द्वारा बच्चियों को भी, नाबालिग बच्ची को ही जो है बड़े लोग वहां पे खरीदते हैं, यहाँ से 50,000 में खरीदते हैं और वहाँ जाकर 2-2 लाख में बाहर बेचने का काम सेल ट्रेडिंग भी बहुत कर रहा है। और वर्तमान में छिंदवाड़ा के परिदृश्य में हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 32 बच्चे जो हमारे आज जो ट्रैफिकिंग में या गुमशुदा में या किसी ने मतलब किसी ने उठा के लेके चले गया, तो ये प्रकरण हमारे आज मध्य प्रदेश में 32 है। यदि हम 52 जिले में यदि अगर निरंतर एक एक केस भी निकलते जाएंगे
बिल्कुल,
तो हमारे प्रतिदिन यदि निकले तो
ये संख्या
निश्चित जो
बिल्कुल
है
सही बात है
महीने
बहुत
भर में कितने बच्चे हमारे यहाँ पे लापता हो रहे हैं। ये
बिल्कुल
सब ये ट्रैफिकिंग बड़े लोग जो है छोटे बच्चों को किसी प्रकार से किडनेप करके बेचने और खरीदी पर उसका काम कर रहे हैं। ये
बिल्कुल
बहुत इसमें भी लोगों को माता पिता लोगों को और आम लोगों को भी समाज सेवी संस्थाओं को भी आगे आके प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है ताकि ये जो गलत जो हमारे जो बच्चों के साथ जो अपराध बढ़ रहे हैं उन
जी
अपराधों को हम लोग कम कर पाएंगे। और इसी उद्देश्य को लेके हम जिले में सभी भी बच्चों के लिए स्कूलों में जाके लोगों को बता के इनसे बचने की हम बात करते हैं। अपराध
बिल्कुल
बच्चे जब तक हम इसका प्रचार प्रसार सही ढंग से जमीन स्तर पर नहीं कर पाएंगे तो लोग अपराध की संख्या बढ़ती जाएगी। इसलिए
बिल्कुल
हमारे कानून की जानकारी अपराध क्या होता है अपराध को जानने की जरूरत है। यदि कोई बच्चा अपराध को पहचान लेगा तो निश्चित रूप से जो बढ़ते अपराध को हम लोग कम कर पाएंगे। छोटे
बिल्कुल
छोटे
सर
मामले जो रहते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम किसी चीज को समझ नहीं पाते अपराध की परिभाषा को नहीं समझ रहे और
बिल्कुल
अपराध की परिभाषा को बताने की नितांत आवश्यकता है ना। छेड़खानी करना गाली बकना गलौज करना आम आदमी तो गाली गलौज कर देता है लेकिन उसकी रिपोर्ट हो गई तो अपराध हो गया। यदि अगर वो यदि अपराध यदि रिपोर्ट नहीं हुई तो वो अपराध नहीं कहलाता सामान्य भाषा में गाली को दिया। ये है कानून का गाली करना किसी को परेशान करना शोषण करना ये सब अपराध की श्रेणी में आता है। ये मतलब FIR हो गई मतलब अपराध में कन्वर्ट हो गया। यदि अपराध यदि अपराध में यदि FIR नहीं हुई तो वो आदमी आदमी निडर होके लोगों को परेशान करना पड़ता है। इसलिए
बिल्कुल
हम
बिल्कुल
लोगों को अपने कानून को समझना है और कानून को समझेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जिले की जो बढ़ते हुए अपराध है बालकों के वो हम उसको अच्छे तरीके से
बिल्कुल।
कम कर पाएंगे।
तो श्रोताओं, आप अभी सुन रहे थे श्री श्यामल राव जी, वरिष्ठ समाज सेवी और चिंतनकार को, और आपने जेजेबी को बहुत ही सुंदर तरीके से हम तक पहुंचाया है, और निश्चित ही मोबाइल वाणी के माध्यम से बहुत सारे श्रोता इसको सुनेंगे, और निश्चित ही इस प्रकार के जो निर्देश सर से प्राप्त हुए हैं या जो जानकारियां हमें मिली है, निश्चित ही वो समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेगी। सर, मोबाइल वाणी में आपने जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल वाणी का मंच आपके लिए बहुत आभारी है आपका।
बहुत 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 धन्यवाद योगेश जी। जो मोबाइल वाणी के माध्यम से यदि ये संदेश श्रोताओं तक पहुंचता है तो निश्चित रूप से जो हम जिस उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए हम लगे हुए हैं वो अपने
जी
उद्देश्य में जिले के वासियों को हम अपराध जो बढ़ते अपराध को हम लोग कम कर पाएंगे।
बिल्कुल सर,
धन्यवाद योगेश
जी
जी।
जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।